حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عرابی کو سنا، عرابی جیسے کم پڑھے لکھے، پیچھے باتم کر چکے، بدو ٹائپ کے لوگ، دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہم انی استغفرک واتوب الیک، یعنی جلدی جلدی یہ جملہ بول رہا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، توبہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا اے عرابی، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، توبۃ الکذابین. اس نے کہا اچھا، پھر سچوں کی توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سچی توبہ میں چھ چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر شرمندگی، یعنی کہ انجوائے کریں کیا اچھے دن تھے. شرمندگی، پسینے پسینے ہو جائے بندہ اپنے پچھلے گناہوں کو سوچ کر. دوسری چیز، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا، یعنی روزے چھٹے میں تو ان کو رکھنا پڑے گا. تیسری چیز، کسی کا حق غصب کیا تو اسے واپس لوٹائیں، یعنی ماں باپ کے حق نہیں دیے دیجئے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا کے دیجئے، کسی سے کچھ لیا تھا واپس نہیں کیا، یعنی حقوق العباد کے معاملات کو واپس لوٹائیں. پھر اگلی چیز، جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگے، یعنی کسی کو تکلیف دی اپنی زبان سے تو اس کو دور کرے. پانچویں چیز، پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اور چھٹی شرط ہے کہ جس طرح پہلے اپنے نفس کو بدکاریوں سے موٹا کیا تھا، کھلا پلا کے بندہ موٹا ہی کرتا ہے نا، اب اسے اطاعت الہی میں گلا دے. ویٹ لوز کرو اللہ کے راستوں میں، بھوکے رہو، سفر کرو، جاگو راتوں کو. یہ حسن جس کو کتنا داغدار کیا، اب اللہ کے راستے میں اس کو بالکل ختم کر دو. یہ ہے سچوں کی توبہ، کاملین کی توبہ. ایسا انسان گناہوں پر ندامت کرنے والا اس چیز میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے موقع دیا کہ میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کیوں کریں؟ اب یہ ایک سوال ہے. یہ سب کچھ تو ہو گیا، کر کرا لیا، یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن کریں کیوں؟ فرمایا سا ربکم یکفرانکم سیئاتکم. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے دور کر دے. لفظ سا کو دیکھ کے پھر دل ہل جاتا ہے، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے شاید، مے بی، پرہیپس، شور نہیں ہے. پھر بھی اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. تم پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کوئی کلیم نہیں کل کر سکتے کہ اللہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میرے گناہ معاف کر دے، اور کیوں نہیں کیے اور کدھر کیے ہیں لا کے دکھاؤ. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عصا آتا ہے تو پھر اس سے مراد یقیناً بھی ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ندم التوبہ اور تائب کمل لا ذنب لہ، دونوں کا خلاصہ کیا ہے کہ شرمندہ ہونے والا شخص ہی اصل میں توبہ کرنے والا ہے، اور توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور ویسے بھی دیکھیے کہ جنت تو اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پہ کسی کو بھی نہیں کہا کہ ضرور ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے عملوں پہ جنت ملے گی، ہاں مگر میرا رب میرے اوپر اپنے فضل اور رحم کا معاملہ کر دے. اسا ربکم یکفرانکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. اس کے بھی دو درجے ہوتے ہیں. دنیا میں بری عادتیں چھٹنے لگتی ہیں، گوسپ کی عادت پڑی تھی تو ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے. اسی طرح انسان جب ان چیزوں کے اندر پڑتا ہے کہ جس میں انسان دوسروں کو دکھ دیتا تھا تو اب دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے، دل توڑنے والا دل جوڑنے والی باتیں کرتا ہے، کٹنے والا جڑنے کی کوششیں کرتا ہے. اور دوسرا مراد ہے کہ قیامت کے دن تمہارے برے اعمال کی سیاہی تم سے دور کر دے گا. سچے دل سے توبہ کر لو. التکفیر سترتہ، کسی گناہ کو یوں ڈھانپ دینا کہ اس پر یوں پردہ ڈل جائے جیسے نسیم منسیہ ہو گیا، بھولی بسری. لوگ نہیں بھولتے ہمارے گناہ، اللہ بھلا دیتا. آپ کو اگر اپنے گناہ یاد کرنے ہیں نا تو جائیے اپنے رشتہ داروں کے پاس، خاندان کے لوگوں کے پاس بیٹھ کے تو دیکھیے، آپ کی بچپن کی بھی باتیں آپ کو یاد کرائیں گے کہ وہ یہ کرتی تھی اور اس نے یہ تھی، اور وہ اس کا فیڈر چھین کے پی جاتی تھی اور وہ یہ کرتی تھی، اور اس بچے نے تو بڑا ہی ستایا ماں کو. اچھا میں نے دیکھا بعض دفعہ کسی کو صدمہ پڑتا ہے نا، مثلا جیسے کسی کی بچی کی کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ بھائی مثلا کہ گھر نہیں بنا یا طلاق ہوئی، تو کچھ ظالم کہتے ہیں یہ باپ کو ملا بدلا باپ، इसने भी इसकी माँ को बड़ा सताया हुआ है। यकीन करें, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है लोगों कैसे बोलते हैं। ये अब आज बेटी के तौर पे ये सामने आई, ये इसकी माँ का सब्र आज इसके सामने आया कि इसने भी तो अपनी बीवी को सताया था। और ज़रा कोई बच्ची किसी और दुख सुख में कहते हैं, हाँ इसने भी खूब सताया था ना अपने माँ बाप को। हम बनना चाहते हैं मालिक यौमिद्दीन, हम जजमेंट करते हैं, इंतहाई सदमे की बात है। इन चीज़ों से दुख ये नहीं रहता कि दुख क्या है, लोगों की बातों का दुख ज़्यादा बड़ा होगा। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मैं पर्दे डाल दूंगा, इस तरह छुपा दूंगा जैसे है ही नहीं, लोग फिर भी कुरेदना चाहेंगे, फिर भी उनको नहीं दिखेगा। कफ़ारा, कुफरान नेमत का लफ्ज़ पीसी से ही है, बहुत इसकी भी बारीकी है, लेकिन बस युकफ़िरु अन्कुम सय्यातिकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह छुपा देगा, लोगों के जहनों से भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह एक वक्त आएगा। तुम इतनी नेकियां करोगे कोई सोच भी नहीं सकता, तुम्हारे बारे में गुमान भी नहीं करेगा कि कभी किसी मौके पे तुमने कोई गलत काम भी किया था। जब गुनाह धुले मिटे, रास्ते के वो ऑब्स्टिकल दूर हुए, जिस तरह वो रोड पे जाते हुए डंडियां लगी होती हैं ना जगह जगह, चेक पोस्ट कह लें, तो यो कफ फिरानकुम सय्यातिकुम के कॉइन्स डालते जाओ तौबा के और रास्ते खुलते जाएंगे। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार, और उन जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसमें बहती हुई नहरें होंगी, सारी रुकावट ख़त्म। और यही असल बात है, जिस बंदे को इस बात का यकीन हो गया ना कि मैंने अपने गुनाहों को दुनिया में माफ़ कराना है, वो दुनिया में कोशिश करेगा। पीछे मिसाल दी थी आपको सूरत निसा के बिल्कुल शुरू के लेसन्स, चौथे पारे का आखिरा, बेहतर है कि दुनिया में अपने गुनाहों की पस निकाल लें, वरना अल्लाह निकालेगा तो बड़ी तकलीफ़ होगी, कब्र में उल्सरात पे कट लगेंगे और कैसे गंदगी निकलेगी। फिर यहाँ याद रखिए कि तौबा जो होनी चाहिए ना वो शर्मिंदगी के साथ हो, ना कि सेहत के नुकसान के लिए। शराबी शराब छोड़ दे क्योंकि लंग्स के कैंसर का डर है, ये तौबा नहीं है। किसी बदनामी के नाम से कोई लड़की लड़के से ताल्लुकात ना रखे, ये भी तौबा नहीं है। माली नुकसान से बचने के लिए अब इस गुनाह को छोड़ता वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सच्ची तौबा क्या है कि जिस वक्त बंदे को एहसास हो जाए कि इससे अल्लाह की नाफरमानी हुई, उसी वक्त छोड़ दे, किसी चूँच राम में ना पड़े। इसी तरह खेल नहीं बनाना चाहिए तौबा को कि छोड़ा, गुनाहों की तरफ पलटते रहे, रमज़ान आया तो छोड़ दिए, ईद आई तो फिर पकड़ लिए, ये सही नहीं है। शर्मसारी के कचोके लगेंगे तो फिर इंशाल्लाह तौबा सच्ची तौबा होगी, और कभी कोई सच्ची तौबा कर ले तो उसको हार नहीं दिलाना चाहिए, ये भी एक बहुत अहम बात है। नापसंदीदा है ये अमल और इंतहाई बड़ा गुनाह कि किसी के हार दिलाने पे कोई फिर वही गुनाह करने लग जाए कि अच्छा फिर अब मैं तुम्हें बुरा बन के दिखाता हूँ, ये स्टाइल नहीं होना चाहिए। इस तरह की दुख देने वाली तबलीग भी नहीं करनी चाहिए कि दूसरा चिड़के और भी आ जाए। फिर इसी तरह जब कभी अपना वो गुनाह याद आए, पिछली ज़िंदगी के गुनाहों से नफ्स लुत्फ़ लेता हुआ दिखे तो और ज़्यादा अल्लाह को याद करें। बस कहते हैं कि गुनाह याद आता रहे इसका मतलब होता है कि अभी वो माफ़ नहीं हुआ, ये दुरुस्त नहीं है, याददाश्त थोड़ी चली जाती है तौबा करने वाले की। हाँ, हर दफ़ा गुनाह का एहसास क्यों आता है कि और ज़्यादा तौबा कर लो। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा और उन जन्नतों में ले जाऊंगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। अगला हिस्सा अगर आप सोचें तो सूरत हदीद की आयत 12 और 13 को जहन में रखते हुए सुने तो वही आगे बात आ रही है। यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबी वल्लज़ीन आमनू माहु, उस दिन अल्लाह रुस्वा नहीं करेगा नबी को और इन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए। कैसे, क्यों? कुफारे मक्का को अपनी दौलत पर बड़ा घमंड था और नबी सल्लम और आपके साथियों की गुरबत और बेबसी को देखकर इस गलत फहमी का शिकार हो गए कि आज हम बड़े हैं, इज्जत वाले हैं, माल वाले हैं, बहुत बड़ा जत्था, क़यामत आनी तो है कोई नहीं, आ गई तो देखना वहाँ भी हमारी बड़ी इज्जत होगी। और ये मुल्ला और मौलवी और ये कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करने वाले, कल वहाँ इनको इज्जत नहीं मिलेगी। यदि दुनिया के मामले पर क्यास करते थे तो अल्लाह कहते नहीं यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबीया, अगर बीच में से नबी का नाम निकाल देना तो आयत के पिछले हिस्से को जोड़ूं तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ अल्लाह सुभान व तआला वल्लज़ीना आमनू को खुशखबरी देता है, जिनको तौबा करने के बाद भी कभी कभी ये ख्याल सताता है कि अल्लाह पिछले गुनाह फिर दिखेंगे तो क्या बनेगा। तो कहा, नहीं फिक्र ना करो, गुनाह तो ख़त्म होके नेकियों में ढल चुके हैं, अब क्या दिखना है, बल्कि नेकियां तो नूर बन के फैल चुकी हैं। नूर हम यस आबैना ऐदी हिम व भी ऐमानी हिम, उस रोज़ इनका नूर ईमान दौड़ता होगा इनके आगे और इनके दाई जानेब। नेकियों का नूर, अमल सवाले का नूर, अल्लाह ताला से मोहब्बत का नूर। अंधेरे हैं, खूब अंधेरे, सब ठोकरे खा रहे हैं, लोग दोजख में गिर गिर के पड़ रहे हैं, और ये रोशनी ईमान वालों को मिलेगी। ऐसे नाजुक मौके पे जहन्नुम में गिरने वाले लोगों को देख देख कर लोग फिर दुआएं करेंगे। यकूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ रब हमारा नूर मुकम्मल करना, हम बीच में ही इस नूर के सफ़र से कट ना जाएं, बुझने ना देना के पुल सरात पे पहुंच जाएं। अहले ईमान जब देखेंगे कि मुनाफिकों के नूर बीच रास्ते में रुक गए, कुछ लोग होंगे शुरू में जब सफ़र करेंगे शुरू तो नूर होगा उनके पास, जूँ ही ऐन जहन्नुम के बीच में पहुंचेंगे बल्ब फ्यूज़ बैटरी डाउन। ये वही थे जो नेकियों में बड़े इतपाक से चलते थे और इतने इतपाक से नमाजें शुरू की, खुशू वाली नमाजें, फिर उसी नमाज पे आ गए जो बस मारी बांधी नमाज थी। और इसी तरह के काम, नेकी करके छोड़ना, अल्लाह के नबी की एक हदीस का खुलासा है कि ज़ाक़त आमुल ईमान, उस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया जिनमें तीन बातें हों, और उसमें एक बात जो हमारे मौजू से मुतल्लिक है कि इस्लाम से कुफर की तरफ आना, नेकी से दूर होना इतना नागवारा जैसे जलता हुआ अंगारा हाथ में रखा। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको नेकी का मौका मिला, उसकी बदबख्ती का क्या कहिए कि जिसने नेकी को चख के छोड़ दिया, नमाजों को चख के छोड़ दिया। ऐसे लोगों के जलते बुझते टार्च देखकर वो दुआएं करेंगे कि रब बनात मिमलाना नूराना, ये कौन सा नूर है, ये ईमान का नूर है, ये इस्लाम का नूर है, ये कुरान का नूर है, वग़फिर लना और हमें बख्श दे, इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। कहाँ अल्लाह ताला ने मोमिनों को रखा, आप सोचिए कि स्टेज बना होता है ना, वहाँ ख़ास लोगों को बिठाते हैं लोग और सारी लाइटें उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, बड़े बड़े फानूस, सर्च लाइटें और टॉर्च और क्या, ताकि इनका एक एक एंगल दिखे। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के नूर को इस तरह पूरा करना चाहता है कि सारे आंखें खोल खोल के उनको देख लें कि ये है अल्लाह की बात मानने वालों का अंजाम। अल्लाह उनको कोनों खुदरों में नहीं छुपा देगा क़यामत के दिन कि बस कहीं कोने में पड़े हुए और पता ही ना चले बिलाल का क्या हुआ, अम्मार किधर गए। अल्लाह उनको सामने तख्तों पे बिठाएगा, हम सूरत मुतफ़िफ़ीन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। अल्लाह ईमान वाले को दुनिया में भी नुमाया करेगा, कब, जब वो सारे सब्र के मरहले तय कर लेगा। शुरू में दीन पे आते ही घर वाले ख़ानदान वाले बातें शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने उनकी चीज़ जो पकड़ ली, उनसे खुदाई के इख्तियारात जो आपने उनको दिए हुए थे वो आपने वापस ले लिए। लेकिन एक वक्त आता है कि दुनिया में भी अल्लाह सच्चे ईमान की वजह से इज्जत देता है। इसके बाद एक आयत बीच में लगता है कि मफहूम से मुख्तलिफ है लेकिन है नहीं, पढ़ के देखते हैं। या अय्युहन नबी युजाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम, ए नबी कुफ्फार और मुनाफिकीन से जिहाद जारी रखिए और इन पर सख्ती कीजिए। ये वही लफ्ज़ है गिलज़ा जो भी पीछे गुजरा, क्योंकि वमा वाहुम जहन्नम, और उनका मावा उनकी जगह जहन्नम है, ठिकाना आग है। वबिसल मसीर, और कितना बुरा है ये ठिकाना, कितनी बुरी है ये जगह। यहाँ आप देखिए कि एकदम मुनाफिकों और काफिरों के साथ सख्ती और जिहाद की बात क्यों आ गई, पीछे तो बात ही कुछ और थी। बता दिया कि जो वहाँ रुस्वा होंगे उनको इधर ही कर दो। आखिरी दौर में मुनाफिकों की बातें खुल के आने लग गई थी, और सूरह तहरीम की शान नज़ूल में हम देख चुके कि 7 हिजरी के बाद से नाजिल हुई है, तो मदनी दौर का ये आखिर था, 2-3 साल रह गए थे। काब जाहिदिल कुफ्फार, कुफ्फार से जिहाद किसके साथ होगा, तलवार के साथ होगा। लेकिन वल मुनाफिकीन, ये किससे होगा, अल्लाह के नबी ने तो सारी ज़िंदगी मुनाफिकों के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाई, इजाज़त ही नहीं थी, हुक्म भी नहीं था। इसलिए अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ बताया कि मुनाफिकों के साथ कलम का जिहाद करो, डांटो उनको, बताओ कि सच्चे दीन के ये तकाजे हैं, खुशफहमियों में ना रहो, اگلی آیت پڑھیں گے تو بات اور سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی. تم ان کے سامنے اللہ کی بات رکھو، پھر اس پہ سختی کرنی پڑے تو کرو. کچھ چیزیں نرم ہاتھوں سے ہوتی ہیں، کچھ سخت ہاتھوں سے ہوتی ہیں. تمہارے افکار اور نظریات سخت ہونے چاہیے ان کے مقابلے میں. مخالفتوں کے طوفان میں بھی حق کا چراغ روشن رہے. تم ان کے پریشر میں آ کے اپنے دین کو نرم نہ کر لو، کیونکہ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا جہنم ٹھکانا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانا ہے. اس کے بعد ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پہ یہ بات آگے آئے گی جو پیچھے شروع ہوئی. بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے مثال. مثال کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے ہم مثل کرنا، موجود کو غیر موجود کے برابر کر کے دکھانا، یا غیر موجود کو موجود سے نسبت کروانا، محسوس کو غیر محسوس سے جوڑنا. کافروں کی مثال، کس کی مثال دی گئی؟ امرات نوح و امرات لوط، حضرت نوح کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. یہ کیوں دے دی؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ہم قریبیوں میں سے، ہم سائے ہیں، ہمیں ایمان لانے اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر آگے قیامت اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دیں گے، ان کا پلو پکڑ کے ہم بھی بخشے جائیں گے. اللہ نے یہ غلط فہمی دور کی، پہلی مثال بیوی کی دی، کیونکہ بیوی کا شوہر سے بڑا قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے. دنیا میں بھی دیکھیے، دکھ سکھ میں ساتھی ہوتے ہیں، تکلیف اور راحت میں ساتھی ہوتے ہیں، بیماری صحت کا ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا قریبی تعلق بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. تو جب شوہر بیوی کے کام نہیں آ رہا تو بتاؤ پھر باقیوں کے کدھر آئے گا؟ اگر بیوی اسلام کے رشتے میں نہ لگی تو شوہر کے ساتھ رشتہ کام نہیں آئے گا. اور کسی ولی کی نہیں، کسی بزرگ کی نہیں، نبی کی بیویوں کی بات کر دی، نوح اور لوط کی. ان کے دلوں میں نفاق تھا، کفر نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کانتا کانتا، دو ہیں یہ، تحت عبدینی، دو بندوں کے تحت. تحت کا معنی وہی جو ہم ماں تحت کہتے ہیں نا، انڈر. مراد استعارہ ہے یہاں کہ بیویاں تھیں، یعنی ان کے کنٹرول میں تھیں. من عبادنا الصالحین، ہمارے دو بندوں کے. اب اس کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیجئے گا، یہ صالحین ہے. ترجمہ نہیں آئے گا تو صالحین پڑھ دیں گے، یعنی ان کو اللہ نے اچھا نصیب دیا، اچھے نیک بندوں کی یہ بیویاں بن گئیں. لیکن اندر خیانت تھی نا، اندر کھوٹ تھا، تو کیا کیا؟ فَخَانَتَاهُمَا، تا کو لمبا نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا، فَخَانَتَاهُمَا، پھر ان دونوں نے ان دونوں کی خیانت کی. یہ مفہوم ہے اس کا. لوط کی بیوی نے لوط کی، نوح کی بیوی نے نوح کی خیانت کی. کیسے خیانت کی؟ یہاں خیانت کا معنی بدکاری نہیں ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کے تعلق میں عموماً خیانت کا یہی مفہوم آتا ہے. اصل میں ان بیویوں کا قصور کیا تھا؟ کہ یہ شوہر کے مشن میں شامل نہیں تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اس کی ہمدردیاں اپنے خاندان کے ساتھ تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اس کے دل میں بھی اپنے خاندان اور اپنی برادری کی محبت بہت زیادہ تھی. لہٰذا انہوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کیے. نوح علیہ السلام کی بیوی کہتی تھی کہ یہ دیوانہ ہے. سورہ قمر میں پڑھ چکے ہیں کہ نوح کو لوگوں نے دیوانہ، مجنو کا سور کا لفظ آیا تھا، سین عین را. آج بھی کوئی بیویاں اپنے دیندار شوہروں کو دیوانہ کہتی ہیں؟ کہ ان کو تو پتہ نہیں کیا. اور حضرت لوط کی بیوی کی خیانت کیا تھی؟ کہ گھر آنے والے مہمانوں کے بارے میں اپنی قوم کو اطلاع دیتی تھی. اور ان بیویوں کا جرم کیا تھا؟ کہ ان کی ہمدردیاں کافر قوم کے ساتھ تھیں، اور دونوں نفاق میں تھیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہوئی کہ یہ کس کی بیویاں ہیں. فلم یغنیہ انہما من اللہ شیئا، بس وہ دونوں نبی ان کے شوہر اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے. اور ان دونوں کو کیا کہا گیا؟ وقیل ادخلا، تم دونوں داخل ہو جاؤ، انارا، آگ میں، مات داخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہ حکم تو دیا جائے گا قیامت کے دن، یا ان کی موت کے وقت پہ دے دیا گیا، دونوں ہی باتیں ٹھیک ہے. یہ کیوں بات آ گئی؟ ازواج متخرات کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو، اللہ کے نبی کی بیویاں ہو، شکر کرو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب کیا ہے، دعا کرو اسی پہ موت آئے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ नबी सल्लम की बीवियों में एक आध ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपना सारा हक़ छोड़ती हूँ, लेकिन आप कभी मुझे अपने से जुदा ना करिएगा ताकि क़यामत के दिन मैं आपकी बीवी बन के उठूँ। और इसमें उन लोगों के खोखले दावों की भी दलील है कि जो कहते हैं कि नबी का साथ हमें सब कुछ दे देगा। असल बात यह है कि जहाँ बंदे का अमल पीछे रह जाए, उसका नसब उसको आगे नहीं करेगा। कितनी बड़ी मिसाल है, आंखें खुलती हैं कि नहीं पढ़ के? दुनिया में हर वो औरत जिसका शौहर बड़ा नेक है, मत खुश रहे कि ये तो हाफिज़ साहब हैं, ये मेरी सिफारिश करा लेंगे, ये मुफ्ती साहब, ये फलां। नहीं, पहले अपने किबले दुरुस्त करने पड़ेंगे। यही बात मर्दों के लिए भी है। बीवी ने क्या कहते, तुमने मुझे भी बख्शवा लेना। देखिए कई लोग कितने ज़्यादा श्योर होते हैं इस बात पे, नहीं ये देखना मेरी बीवी ने मुझे बचाना है, मैं इसको इजाज़त नहीं दे रहा कुरान पढ़ने की। बस मेरा यही अमल बहुत है। आप बताएं, किसी का इजाज़त दे के ख़ुद गलत काम करने लग जाना, या नमाज ना कोई पढ़े और आपको रोज़ कह के सुबह के साथ अब शाम का सेशन भी अटेंड कर लो, तो फ़ायदा होना चाहिए। खुद बचना चाहेंगे तो इंशाल्लाह कोई हाथ बढ़ा के बचा देगा। ये थी मिसाल कुफर वाली कहानी की। अब आगे मिसाल है दो ईमान वाली औरतों की। वदरबल्लाहु मसलल लिल्लज़ीन आमनु मरअतल फिरऔन वदरबल्लाहु, और इसी तरह बयान की अल्लाह ने मसलन मिसाल किसके लिए, लिल्लज़ीन आमनु, ईमान वालों के लिए। किसकी मिसाल, इमरअत फिरऔन, फिरऔन की बीवी की। कौन थी ये, आसिया बिनते मज़ाहिम इनका नाम था। आसिया दरिया में बहते हुए मूसा अलैहिस्सलाम आए संदूक में, तो इसी औरत ने हज़रत मूसा की परवरिश का अहतमाम किया। जब जादूगरों का सामना हुआ तो ये भी मुसलमान हो गई। हमेशा फिरौन के मुकाबले में ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफदारी करती थी। आखिर में फिरौन को पता चल गया कि आसिया उसे खुदा नहीं बल्कि मूसा के रब पर ईमान ला चुकी है, तो फिरौन ने जुल्म शुरू कर दिया। दोनों हाथों और पाँव में मेखें ठोकता, चिलचिलाती धूप में डाल देता, लेकिन आप की इस्तकामत का ये हाल था कि मुस्कुराती रहती। फिरौन जब उनको मुस्कुराते देखता तो कहता, ये पागल और दीवानी हो गई है। ऐसे वक्त में जब उसने धमकी दी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, फिरौन की आदत थी कि लोगों को कील ठोक के मारता था, तो इसने उस वक़्त गिव अप करने की बजाय एक दुआ की, क्या इस कालत रब्बिबनी ली इंदका बैतम फिल जन्ना। जबकि इसने दुआ की कि मेरे रब, मेरे लिए अपने पास ही जन्नत में एक घर बना देना। वनजिनी मिन फिरौन, और मुझे फिरौन से बचा ले, मुझे नहीं चाहिए ये फिरौन, और मुझे ये दुनिया का रोब दाग ये कुछ मुतासिर नहीं करता, ना सिर्फ के फिरौन व अमली ही, और इसके अमल से, और बास कहते इसके अमले से, दोनों ही मानी है, यानी फिरौन के चमचे इसके पैरोकार इनसे भी बचा ले। वनजिनी मिनल कौम अज़्ज़ालिमीन, और मुझे इस जुल्म करने वाली सितम पेशा कौम से निजात दे दे। ये है शादीशुदा औरतों के लिए एक मिसाल। अगर आप यहाँ गौर करके देखें तो फिरौन की बीवी कौन थी, मिसेस फैरो, फर्स्ट लेडी, क्वीन, मलका। सच्चा ईमान अंदर आता है ना, तो उसको फिर ना किसी का रोब लगता है रोब, और ना कोई लालच लालच लगता है। अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ फिरौन की बीवी की मिसाल क्यों दी, ताकि ईमान वालों को रग़बत मिले, और इसलिए दी कि मुश्किल तरीन हालात में जालिम तरीन शख्स के सामने दीन के लिए कैसे इस्तकामत पे खड़े रहना है, कैसे सब्र करना है। और इस मिसाल से अल्लाह तआला ने रग़बत दी उन लोगों को कि जो हमेशा आसानियों की तलाश में होते हैं, चाहते क्या कि आसानियाँ होती रहें और दीन के अहकामात पे अमल करें, दीन फैल जाए, हम उसके लिए अपना हिस्सा ना डालें। हज़रत आसिया की ज़िंदगी से ये पता चलता है कि मुश्किलात में ही तो अल्लाह के अहकामात पर अमल होता है, और तंगियों में मसाइब में सब्र करके बंदा अल्लाह के अहकामात पे अमल करता है। और यहाँ से एक और भी सबक दिया अल्लाह ने ईमान वालों को कि कुफर की शान और शौकत और काफिर की दौलत ईमान की दौलत वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो सच्चा मोमिन है वो दौलत से या किसी की कुव्वत से ईमान को नहीं छोड़ता। और अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया की मिसाल से बता दिया कि वक्त के सबसे बड़े जालिम और काफिर की बीवी थी, और वो उनको ईमान से ना रोक सका तो कोई कैसे कह सकता है कि मुझे रोकते हैं, कोई कैसे करता है। इस कहानी को ज़रा ऑपोजिट करें, बीबी आसिया वही करती जो अमूमन ऐसे हालात में किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़। कोई बात नहीं, अब मेरे दिल में तो ईमान है ही तो है, अब मैं क्या और करूं, नाम आता इधर। दो चीज़ों का यहाँ तذکرہ, मिन फिरौन और अमली ही। क्या छोड़ा मोहब्बत करने वाला शोहर और क्या छोड़ा महल छोड़े, ये दो ही तो मुश्किलात हैं ज़िंदगी की। हम दीन के नाम पे रिस्क नहीं ले सकते कि हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। महल इतना बड़ा मिला हुआ, अब इसको छोड़, और शौहर मिला पता नहीं फिर बाद में क्या हालात होंगे। अल्लाह ताला ने इस औरत के साथ क्या मामला किया, रिवायात में आता है, यानी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें, खुलासा ये है कि जन्नत में अल्लाह सुबहाना ताला हज़रत आसिया को वो महल देगा जो उनके उसी जगह पे जहाँ उनको तकलीफ़ के साथ शहीद किया जा रहा था तो उनको दिखा दिया गया था। फरमाया कि बीबी आसिया की अभी जान भी नहीं निकली थी तो अल्लाह ताला ने दिखाया। पढ़ के सुना देती हूँ एक रिवायत इसके बारे में। जब आसिया के हाथों और पाँव में मेहें गाड़ दी गईं तो अल्लाह ताला ने इनके जन्नत के महल को इनके सामने कर दिया, जिससे इनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गईं और वह अपने रब के इस लुत्फ़ व करम को देख कर मुस्कुराने लगीं। आप कहेंगे महल मांगा, महल पे गौर ना करें, इंदा का पे गौर करें। महल तो दुनिया में भी मिल जाएंगे लेकिन चाहिए वो जो इंदा का, अल्लाह का कुर्ब दें। असल मोहब्बत जो है ना वो अल्लाह की है। जब अल्लाह की मोहब्बत है तो अल्लाह होगा तो फिर मिलेगी वहाँ की जन्नत आला दर्जे। बास कहते इंदा का मतलब है कि अपने पास से ही दे दे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जान दे रही अल्लाह के रास्ते में, कह रही अल्लाह मैं तो हक नहीं रखती, तो अपने पास ही मुझे दे दे, वह नजीनी और निजात दे मुझको। आप देखिए कि 28वें पारे के बिल्कुल आखिर में इस वाक्य का ना क्या बताता है। हज़रत आसिया की इस दुआ से पता चलता है कि इनको फिरौन के महल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनको रब की जन्नत से दिलचस्पी थी। इससे हज़रत आसिया के शऊर की पुख्तगी का पता चलता है। इससे पहले दुनिया की हकीकत इन पर नहीं खुली थी तो दुनिया में मगन थी। ईमान की वजह से जब आखरत के पर्दे चाक हुए तो उस दुनिया से दिलचस्पी हो गई। यही कुरान का काम है, ये सिर्फ आगे से पर्दे हटाता है आंखों पे पड़े हुए ख्वाहिशात के, तासुबात के और न जाने कौन से गंदे पर्दे। और इससे ये भी पता चलता है कि हज़रत आसिया फिरौन की बादशाहत से कतन मरूब ना थी, क्योंकि वह बादशाह कायनात की हकीकत को पा चुकी थी। इनके नज़दीक दुनिया के साजो सामान की कोई वैल्यू ना थी। और हज़रत आसिया जालिम कौम से निजात मांगती हैं, क्यों? इसलिए कि उनको वहाँ रहकर अपना ईमान बचाना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि माल और इक्तदार वाले अक्सर ईमान की दौलत वालों को बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं ये भी हमारे ही पास हो। आप देखिए कि हम सब कुरान के साथ जुड़ रहे हैं, आप में से माशाल्लाह कई लोग जो कुरान का कोर्स कर रहे हैं, वो चलें 1 साल से तो ज़्यादा हो गया ना, ऊपर के महीने किसी के भी फ़र्क हो सकते हैं। यहाँ तक घर वालों को आपने अपने दीन का क्या मैसेज दिया? मैं बहुत सोच रही थी इस पे, आजकल बहुत सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे घर वालों को अभी तक ये नहीं पता चला कि कुरान हमारी ज़िंदगी है, ये क्लासेस, यहाँ के काम, यहाँ की बातें हमारा घर है, ये असल वो चीज़ है जो हमें दुनिया के घरों को भी ठीक चलाने और आखरत के घर की हिफाजत करने के लिए माइल करता है, तो यकीनन कमी है फिर हमारे अंदर। ये नहीं हो सकता कि 1 साल 1.5 साल से आप इस कुरान से जुड़े हों, आज तक आपके शौहरों को ये पता ही ना चले कि ये कुरान और इसके तकाजे आपके लिए क्या रखते हैं। बस आप देखिए कि किसी के घर में शादी होती है ना, शादी के दिन जो होते हैं वो आम दिनों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी शौहर को ये कहना नहीं पड़ता कि तुम इस वक्त यहाँ क्यों नहीं और वहाँ क्यों नहीं, घर भी बिखरते हैं, सब कुछ होता है। इसी तरह याद रखिए कि हमारा घर वालों से जो ताल्लुक़ है ना, अगर वो सही उसी तरह जैसे होना चाहिए, तो जब दीन के एक्स्ट्रा तकाजे पड़ते हैं ना, तो कोई अगर ये कहते ना कि क्लास के बाद किधर हो, तो ये ऐसे ही सवाल है जैसे बेटी की शादी को कोई 2 हफ्ते रह गए तो कोई पूछे कि क्या ज़रूरत थी कहीं जाने की। हम खुद देखते हैं हमारी ज़िंदगी 6 महीने तक अपसेट रहती है, शादी से पहले और बाद भी। कार्ड देने, शादी, कपड़े, जेवर, ज्वेलरी, आखिरी दिन तक औरतें घर को अपसेट करके तैयारियां कर रही होती हैं। कोई कुछ नहीं कहता, क्यों? उनको पता है कि ये ज़रूरी है, ये बच्चे की शादी है, ये बच्ची की शादी है, मेहमानों को देखना है, ये करना है, फिर एक्स्ट्रा तकाजे। मेरा नहीं ख्याल कोई शौहर उस वक्त करता है, करे भी तो बीवी को परवाह नहीं है। हम दीन के नाम पे, यानी मेरे दिल में था कि मैं आप सबको एक सवाल दूँ लिखने के लिए, और उसका जवाब आप अपने शौहरों से लिखा कर लाएं या अपने घर वालों से लिखा कर लाएं। कई से एक सवा साल के सफ़र ने उन्होंने आपके अंदर क्या तब्दीलियाँ महसूस की हैं, वो क्या सोचते हैं कि आपकी ये क्लास के लिए क्या है, इसका जवाब लिखा के लाएगा। कैसा रवैया आपका? अगर आपके घर वाले आप गिव अप कर चुके हैं ना कि नहीं कोई रुकावट नहीं, नहीं पवन फ़ायदे कोई नहीं होना, इसने मानना ही नहीं, ये तो ऐसे जैसे किसी के मुँह से ऑक्सीजन का मास्क हटाओ, उनको अगर यकीन हो गया ना ये मर जाएगी, ये कुमला जाएगी अगर इसको कुरान से रोका, तो ये आप समझ लेंगे जीत चुके हैं। और अगर अभी नहीं ये किया ना तो इसकी वजह वो नहीं है, माजरत के साथ इसकी वजह आप हैं और आपके बाद मैं हूँ कि मैंने आपको टीच ही नहीं अच्छा किया, आपको सिखाया ही नहीं कि एक दीनदार लड़की कैसे रहती है घर में, और एक दीन वाली औरत का घर कितना बासलीका, वो कितनी ऑर्गेनाइज, वो कितनी प्रायोरिटाइज होती है कि वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से करके रहती है, फिर भी वो उसका दिल होता है कि मैं कुछ और करूँ, कि उसके घर वाले कहते हैं जाओ तुम काम करो हम खुद ही कर लेंगे। ये अचानक फैसला नहीं होता। याद रखिए, हम अपने अखलाक का क्रेडिट अपने घर वालों को देते हैं ताकि वक्त पड़ने पे कैश करा सकें, और अगर इस लम्हे भी हम ये सोचते हैं ना कि हम ये नहीं कर सकते, तो समझिए कि कमी हमारे अखलाक और रवैये में, जिसने उनको बताया ही नहीं कि ये कितनी प्यारी चीज़ पढ़ के आ रही है जिसका इतना अच्छा असर इनकी ज़िंदगियों पर आ रहा है। फिर फ़िक्र की ज़रूरत है, फिर इंसान वाकई गौर करे कि मैं इस दीन को बदनाम तो नहीं कर रही। इसके बाद कंवारी लड़कियों के लिए एक मिसाल है, व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, और दूसरी मिसाल मरियम बिनते इमरान की है। कौन? अल्लती अहसनत फरजहा, जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत की। शादीशुदा औरत के लिए घर बड़ा कीमती होता है, उसको नहीं तोड़ना चाहती, सारी सरगर्मी आखिर घर और घर वालों पर, और कुंवारी लड़की की सबसे कीमती मता उसकी इज्जत है। अहसनत फरज, दोनों लोग पीछे पड़ चुके हैं, हमने उसी पे पकड़ ले ली। आजमाइश भी वहीं आती है जहां कमज़ोरी आती है, दुश्मन वही हमला करता है जहां से जोड़ कच्चा होता है। फनफहना फीही में रूहिना, फिर हमने फूंक दी उसमें अपनी रूह। वसद्दकत भी कलिमाती रब्बिहा, और मरियम ने तस्दीक की अपने रब की बातों की। ये बड़ी मुश्किल है। वकुतुबी ही, और उसकी किताबों की, और कैसे कर ली? क्योंकि वकानत मिनल कानितीन, वो थी ही अल्लाह के फरमा बरदारों में से। इसको बैकवर्डली चलाइए, जब हमारे अंदर कनूत आएगा ना, दवाम और आजजी, ये जो हम सीख सिखा रहे हैं ना, इससे हम लोगों और घर वालों के साथ बातचीत में आजिज हो जाएं और अल्लाह की इबादत में हम पक्के हो जाएं, फिर सद्दकत भी कलिमाती रब्बिहा होगा। मरियम बीबी की कहानी पीछे हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत देकर बताया कि बिगड़े हुए माहौल में और बिगड़ी हुई कौम में रहकर भी एक इंसान पाक साफ रह सकता है। कोई लड़की ये नहीं कह सकती कि माहौल का असर है, मैं क्या करूँ, सब डेटिंग कर रहे हैं तो मुझे भी करनी है। और अल्लाह ताला ने बीबी मरियम की मिसाल से बता दिया कि अल्लाह की शरीयत और उसकी किताबों की हिफाजत किए बगैर कोई बंदा कानितीन में शामिल हो ही नहीं सकता। और इससे ये भी पता चलता है कि इबादत से जो एनर्जी मिलती है ना, वो दीन के रास्ते में आने वाली मुश्किलात में सहारा देती हैं। किसी की बात से आंसू आते हैं ना, वो नमाज में खुद ही पहुँचे जाते हैं। हमारी इबादत में कमी है, अभी ताल्लुक बिल्ला कमज़ोर है, हम लापरवाह हैं, हम नेकियों के मौक़ों को चेंज की तरह ज़ाया करते हैं। हमने अपने आप को एक ख़ास लेवल पर रखा कि इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जा सकता, ये बोझ होगा हमारे ऊपर। हमने खुद ही सोच लिया हमारे घर वाले ज़ालिम हैं, हमने खुद ही सोच लिया हमारे घर वाले हमारे बगैर रह नहीं सकते, हमने खुद ही सोच लिया कि हम बहुत मजबूर हैं, ورنہ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق اور ہمارے معاملات گھر کے جتنے اچھے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ راستے کی رکاوٹیں دور ہوتی جاتی ہیں.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.